फरमाया वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफरू, और कुफार के लश्करों को अल्लाह ने रद्द कर दिया, वापस पलटा दिया। कैसे? बिगैज़िहिम, उनके गुस्से के साथ, उनके दिल की जलन के साथ। क्या? लम यनालू खैरन, कुछ भी तो उनको नहीं मिला। जो खैर पाने गए थे, जो माल लेने गए थे, ढूंढने गए थे, वो मिली ही नहीं, वापस लौटा दिया। वकफल्लाहुल मोमिनीन अल्किताल, और लड़ाई के लिए मोमिनों की तरफ से काफ़ी हो गया। क्यों? इसलिए कि वकान अल्लाहु कवियन अजीज़ा, अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला जो है वो ज़बरदस्त भी हैं और कुदरत भी रखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अब ग़ज़वे अहज़ाब का आखिरी हिस्सा नकल किया। हम पीछे से देख रहे हैं कि किन हालात में ग़ज़वे खंदक हुई थी। मुसलमान थोड़े थे, काफिर ज़्यादा थे, चारों तरफ से आए हुए थे, अपने आप को बचाने के लिए एक खंदक खोद ली। कोई हालात नहीं थे, कोई इसबाब नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ मुशरिक जो थे वो जमा हो के आए हुए थे, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की। ये जो बात है ना कि वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफरू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरन, कि अल्लाह ने काफरों के लश्करों को बग़ैर उनकी मुराद मिलाए हुए दिलों की जलन के साथ वापस लौटा दिया। इसके बारे में आता है कि ये जो ग्रुप मिले थे ना, कि हम सारे मिल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ महाज कायम करते हैं, अब इनका हाल क्या हुआ कि फूट पड़ गई। अब आप देखिए, अच्छे दिन होते हैं तो सारे हाय बाय करते हैं, और जब बारिशें होने लग गईं, हवाएं चली, आंधियां आईं, सख्त सर्दी थी, उनकी हांडियां उलटने लगीं, तो एक दूसरे को कोसने लगे, क्या ज़रूरत थी आने की, तुम्हें किसने मशवरा दिया था, मैं तो खामखा तुम्हारी बातों में आ गई। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि सब लोग मिल के कहीं चले जाएँ, कोई पिकनिक का ही प्रोग्राम बना ले? पहले जाते बड़े शौक से, अब पता चला गए तो वो जगह ठीक नहीं थी, बारिश शुरू हो गई, कहीं फिसलन हो गई, कोई मसला हुआ, तो वो जितनी फैमिलीज गई होती हैं या घर वाले आपस में लड़ रहे होते हैं, तुम्हें किसने कहा था, हो मैंने तो पहले ही कह दिया था मौसम ख़राब है, अच्छा घर ही बैठे होते, ये था वो था, कोई ना कोई मसला आता है ना। वो कहते हैं ना, मुसीबत तनहा नहीं आती, एक तो मुसीबत आती है, एक ऊपर से लोगों की बातें आती हैं। कोई जीत रहा होता है तो सब बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, हारते तो कहते हैं इनको खेलना ही नहीं आता। आम जिंदगी में लोगों का मामूल है, कोई गाड़ी चलाता है ना, बड़ी अच्छी चल रही, सब मुतमईन है, ज़रा झटका लगे तो सब कहेंगे देख के चलानी थी ना, तुमने देखा नहीं आगे खड़ा है। यानी यही कैफियत होती है कि अब जहाँ वो बैठे हैं, बाहर 1 महीना हो गया इनको मदीना के बाहर बैठे हैं, मुसलमान तो अंदर महफूज थे, उनका पूरा शहर था, उनके खाने पीने थे, इतने 500 मील दूर से तो ये चल के आए हुए थे, अब खुली मैदान में औरतें हैं, बच्चे हैं, जानवरों तक को लेके आए हुए थे, खाने कब तक चलते, ऊँट भी ज़िबा हो गए, ऊपर से आंधी आई, खाने भी उलट गए, तो अब ये एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करने लगे कि ये क्या मुसीबत थी भाई, क्यों आ गए हम तुम्हारी बातों में आ गए। देखिए कुछ लोग तो आते हैं ना, बाकी बुलाए भी जाते हैं मुरव्वत के मारे, जैसे हम कहीं नहीं जाना चाहते लेकिन दुनियादारी दिखाने को मुरव्वतन चले जाते हैं ना, इसी तरह उस दौर में जंगों में लोग मुरव्वतन भी आते थे। सिर्फ ये एक उनका कल्चर था कि पीछे हटे तो लोग हमें ताना देंगे, ये बुज़दिल हैं, ये डर गए हैं, ये कमज़ोर हुए। तो बिल्कुल इसी बात की बात है कि इस जंग में एक शख्स था, अमर बिन अब्दुद, अमर बिन अब्दुद था, कहते हैं कि इतना बहादुर समझा जाता था, कहते थे कि 1,000 सवारों पर ये एक भारी है, कि यानी एक बंदा ये हो और इसके मुकाबले में 1,000 लोग आ जाएं तो वो काफ़ी है। इस जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला उससे हुआ और आपके हाथों से वो मारा गया। अब मुशरिकों ने कहा कि देखो हमें इसकी लाश वापस कर दो, 10,000 दिरहम के इवज़ हमें उनकी लाश दे दो। आपने फरमाया हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, तुम इसको मुफ्त ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत नहीं खाते। यानी उनकी नज़र में वो एक इतना बड़ा सियासी लीडर कह लें या उनका सरदार था कि उसकी लाश के लिए 10,000 दिरहम देने को तैयार थे। तो यही इशारा है इस आयतों में कि वो गुस्से से पेचोताप खाते हुए आए। ये कैसे लोग थे कि जिनको अल्लाह ताला ने पलटा दिया, और अल्लाह ताला किन को काफ़ी हुआ, मोमिनों को काफ़ी हुआ। कैसे? लड़ाई की नौबत ही नहीं आई। आप देखिए कि आप पढ़ेंगे ना सीरत तो आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सी चेंज आएगी। हर जंग का एक डिफरेंट पैगाम है। बदर में तैयारी नहीं थी और जंग हो गई, ओहद में जीत रहे थे, एक नाफरमानी की, सिर्फ रसूल का एक हुक्म टूटा, जीती हुई फतह शिकस्त में बदल गई। गज़वे हुनैन में कहेंगे आज तो बहुत है माशाल्लाह, हज़ारों में पहले तो थोड़े थे तो जीते थे, आज तो बहुत है। अच्छा चलो देखो फिर, अल्लाह ने सूरह तौबा में आयतें उतार दी कि तुम्हें उस दिन अपनी कसरत बड़ी अच्छी लगी थी, जाओ फिर लड़ो। कुछ भी नहीं हुआ, हार गए, क्योंकि वो हवा उखड़ गई। अल्लाह को अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने अपनी कसरत की बात कर दी। गजवा बनू कुरैजा हुआ, उसकी एक अलग कहानी। यानी हर किस्से के अंदर एक अजीब सी कहानी है कि अल्लाह ताला ने बाज जगह मुसलमानों को शुरू में मुश्किल में डाल दिया, बाज जगह जंग में। गजवे तबुक को देख लीजिए, रूमियों के खिलाफ ऐलान हो गया और मुसलमान घर से निकल पड़े। उस वक्त इम्तिहान यही था, खड़ी फसलें तैयार हैं, गर्मी शिद्दत की है, सफर दूर का है, उम्मीद कोई है नहीं फतह की। बड़ा दुश्मन सुपर पावर उस दौर की, कौन जीते कौन वापस आएगा। मुनाफिक हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि देखना इनमें से एक भी वापस नहीं आएगा। अब मुसलमान बस ये कुर्बानी दे के चल पड़े और वहां जाके तकरीबन 20 दिन बैठे रहे। कोई जंग ने एक तीर नहीं चला, एक तलवार नहीं लगी, बस बैठे मजे से इंतजार कर रहे। दुश्मन भाग गया और वापसी पे वहां से कोई काफिला था, कुछ माल खरीदा, इतना नफा लेके आए। किसी जंग में सिर्फ खंदक खुदा के मुसलमानों का इम्तिहान ले लिया, किसी जंग में सिर्फ सफर की सऊबतें बर्दाश्त करा ली, एक तीर नहीं लगा। फतह मक्का को देख ले, एक तीर नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अल्लाह ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा मेरे रास्ते में निकलता है कि नहीं। ये है इम्तिहान हर एक का। अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है कि कोई सुबह उठ के फजर के लिए मस्जिद में जाए। यकीन करें, अल्लाह बेनियाज है हमारे सजदों से। जो टूटी फूटी नमाजें हम पढ़ते हैं, अल्लाह को उसकी जरूरत? उसकी तो तारीफ करने ले फरिश्ते हैं। सिर्फ वो ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा फजर पे उठता है कि नहीं, ये मेरी खातिर नींद छोड़ता है कि नहीं। अल्लाह को परवाह नहीं है ये हमारी जोहर की 4 फर्जों और 4 सुन्नतों की। वो ये देखना चाहता है कि ऐन भूख के वक्त पे खाना छोड़ के ये नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हर नमाज में एक इम्तिहान है कि बंदा मेरे लिए उठता है कि नहीं। और जो लोग कहते हैं सारे दिन की नमाजें जमा करके एक दिन पढ़ लेंगे, उन्होंने तो इम्तिहान की कॉज को ही नहीं समझा। बात वैसे है ना, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है मुसलमानों की मदद कैसे हुई। ना लड़ाई हुई, ठंडी हवाएं भेजी, मदद हो गई। और काफरों को अल्लाह ने कैसे पकड़ा कि उनमें फूट पड़ गई, और नतीजा क्या हुआ कि वो भाग गए। अल्लाह के आगे कौन जीत सकता है? किसी के अंदर कोई जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ताकत वाला है, कुदरत वाला है। और वह अनजलल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताब मिन सयासीहिम वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रौब फ़रीक़न तक़तुलूना वतअसिरूना फ़रीक़न। और अहले किताब में से जिन्होंने काफिरों की मदद की थी, इन्हें अल्लाह ताला इनके किलों से उतार लाया और इनके दिलों में रोब डाल दिया। क्या कि एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे थे और दूसरे को कैदी बना रहे थे? नतीजा क्या हुआ? वाऊ रसकुम अर्दहुम व दियारहुम, और तुम्हें इनकी ज़मीनों का और इनके घरों का, व अमवालहुम और इनके मालों का वारिस बना दिया। कौन सी ज़मीन? व अर्दन लम ततऊहा, इस ज़मीन पर जिसके ऊपर तुमने अभी तक कदम नहीं रखे थे। खैबर की ज़मीन की तरफ इशारा है। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीरा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हम पीछे जिक्र कर चुके कि जब गज़वा खंदक हुई तो मसला क्या हुआ कि मुसलमानों को बाहर से तो कोई मुश्किल ना आई, लेकिन इनका एक कबीला था, फिरका कह लें यहूद का, बनू कुरैज़ा, ये मदीना के अंदर रहते थे। मुसलमानों से इनका माहदा हुआ था। पहले ही दिन अल्लाह के नबी ने माहदा कर लिया था कि अगर किसी वक्त मदीना पे हमला हुआ तो ये यहूद मुसलमानों का साथ देंगे। साइन हो चुके थे मीसाक मदीना के नाम पे, ये बातें हो चुकी थी, ये पाबंद है इस बात के। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंदर ये थे, अब बाहर दूसरे थे। गजवा बनू नज़ीर इससे पहले हो चुका था, बनी नज़ीर पहले से जा चुके थे मदीना से, बनू खैनका भी जा चुके थे, सिर्फ ये कबीला था। और कहते कि ये कबीला जो इनका है ना, ये अपने अहद पास करने के या अपनी बात को निभाने के अतबार से दूसरों से बेहतर था, यानी ट्रस्ट वर्दी था आप कह लें। अब हुआ क्या कि जब बनू नज़ीर को खैबर की तरफ जिला वतन किया, निकाला गया उनको, और जंग साहब की कोशिशें शुरू हुई, तो बनू नज़ीर का जो हाकिम था हुई बिन अख्तब था, और ये अल्लाह के नबी का ससुर भी था बाद में, हज़रत सफ़िया जो थी इसकी बेटी थी। कहते हैं ये रात की तारीकी में छुप छुप के बनू कुरैज़ा का जो सरदार था काब बिन असद, उसके पास से गया। वो समझ गया कि ये मेरे से कोई साजबाज करने आया है। कहने का, काब तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पास ज़माने की इज्जत और चढ़ता हुआ समंदर लेकर आया हूँ, यानी तुम बात मान लो तो देखो फिर तुम्हें कितना कुछ होता है। इन लोगों ने मुझसे अहदो पैमान किया है कि वो मोहम्मद और इसके साथियों का सफाया किए बगैर यहाँ से नहीं टलेंगे। लालच दिया कि हम सब मिल के आ गए इनको मारने के लिए, तुम थोड़ा सा ज़रा साथ दे दो तो बस इनको हम ख़त्म कर देंगे। इसके जवाब में जो कुछ काब ने कहा वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है। देखे दोनों यहूद थे, फ़र्क होता है। इंसान का, उसके कबाइल का, उसके माहौल का, कहने लगा, होई वल्लाह, तुम मेरे पास जमाने की जिल्लत और बरसा हुआ बादल लेकर आए हो जो सिर्फ गरज चमक रहा है। तुम पर अफसोस, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सच्चाई और सिद्क व सफा के सिवा कुछ नहीं देखा। ये सीरत इब्ने हिशाम के अंदर ये कोटेशन मौजूद है। कहा, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मुझे वादा शिकनी पे मजबूर ना करो। लेकिन हुई बिन अख्तब ने कुछ सब्ज बाग दिखाए, इसको बदहती पर मजबूर किया। कहा कि अच्छा ठीक है, यानी क्या बात हुई? कहने लगा, अगर कुरैश मोहम्मद का खात्मा किए बगैर वापस चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैं भी तुम्हारे साथ किले में बंद हो जाऊंगा और वापस नहीं जाऊंगा, और जो तुम्हारा इंजाम होगा वही मेरा होगा। कहेंगे, तुम क्यों डरते हो? अगर नबी सल्लम फौत ना हुए या मारे ना गए तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा जो भी होगा। उन्होंने कहा, अच्छी इतनी बड़ी बात है? इस पे फिर इन्होंने माहदे कर लिए कि हम अब मुसलमानों को नुकसान देंगे। अब हुआ क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग की तैयारियों में जो थे, तो आपने अंसार के जो सरदार थे, साद बिन उबादा, साद बिन मास थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा और एक खवात बिन जुबैर थे, इन सबको भेजा कि ज़रा देखो क्या हो रहा है इर्द गिर्द। क्योंकि जंगों में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? CID, कौन क्या कर रहा है, नकलो हरकत पे गौर करना, किसका क्या मामला है। आपने इनको भेजा और कहा कि ज़रा देखो कि बनू कुरैज़ा वाले बदहदी तो नहीं कर रहे। खबर फैल गई हुई थी, देखे सच छुपता नहीं है, हम छुपाना चाहते हैं वो छुपता नहीं है। कहा ज़रा देखो कि सच्ची बात है, लेकिन तुम अगर उनकी बदहदी की खबर सच हो ना, तो मुझे सबके सामने आके खुल के ना बताना, बल्कि इशारे से बताना। क्योंकि खुल के बताने से मुसलमानों के हौसले टूटते और खामखा एक बंदे के मोरल जो है वो डाउन होता है। खैर ये गए तो इन्होंने वहां जाके देखा कि बात ऐसी ही थी कि इन्होंने माहदा तोड़ दिया हुआ है और अब मुसलमानों के खिलाफ हैं। इन्होंने आके अल्लाह के नबी को इशारे से बताया और अल्लाह के नबी ने इस बात को सुना, आपको तकलीफ हुई, आपने मुसलमानों से तो छुपाया कि चलो अंदर से मुतमईन है, लेकिन अब अंदर से भी खतरा पैदा हो गया। अब हुआ क्या कि गज़वे अहज़ाब तो ख़त्म हो गई, मुसलमान फतह याब हुए, काफिर चले गए वापस हुए। अब सहाबे कराम और अल्लाह के नबी अपने घर में थे, अभी घर वापस आए। आप देखिए 1 महीने का मुहासरा, ज़ाहिर है कि जंग जंग होती है, कोई आम सफ़र नहीं होता, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल फरमा रहे थे और सहाबे कराम जैसे एक रिलैक्सेशन होता है ना, शुक्र है काम पूरा हुआ, कि जिब्राइल आ गए। कहा अल्लाह के नबी, आपने हथियार क्यों उतार दिए? अभी फरिश्तों ने तो नहीं उतारे। चलिए अल्लाह ताला आपको बनू कुरैज़ा की तरफ जाने का हुक्म देता है। मैं कहती हूँ हम एक दर से होके आए ना और साथ ही को फ़ोन कर देना अभी दोबारा जाना है, तो हम कहते हैं हाय फिर जाना है। यानी हम अपनी शौक से कहीं गए हो ना, सैर पे गए हो, और हमें वापस आते ही क्यों कहते चलो अब ज़रा दूसरी तरफ जाए? हम कहते नहीं अब थक गए। लेकिन क्या इनके ईमान थे! अल्लाह के नबी ने ये बात सुनी, आपने एक ऐलान किया, कहा तुम में से कोई ऐसा ना हो कि असर की नमाज तक बनू कुरैज़ा के कबीले में ना पहुंच जाए। वॉकिंग डिस्टेंस था कुछ घंटे का, कहा पहुंचो उनके किलों में, अल्लाह ने हुक्म दिया और मुसलमान चल पड़े। चंद घंटे, फ्यू आवर्स की कॉल में 3,000 मुजाहिदीन तैयार थे खड़े हुए और बनू कुरैज़ा के बाहर जाके उनका मुहासरा किया। ये है वो लोग के मन कदा नहबहु। आज ये कहानियां सुनाने की जरूरत है औलादों को। आज हमने जिन बच्चों को खिला खिला के मोटा कर दिया, सोच मोटी, अकल ख़त्म, यानी जिनके अंदर कुछ समझ नहीं रही, हमारे अपने अंदर नहीं रही, बच्चों की क्या कहेंगे? हमारे अंदर दर्द नहीं, हम सिर्फ इस्लाम का दर्द रखते हैं खबरें सुनने तक। आज वहाँ इतने मारे गए, आज वहाँ ये हुआ, थोड़ा सा अफसोस करेंगे, फिर कहेंगे चलो लाओ खाना खाते हैं, चलो अब शादी पे जाना है वहाँ जाते हैं, चलो लाओ अब ज़रा कुछ आज क्या ड्रामा आ रहा है। ऐसे लोग खसो खाक की तरह अल्लाह की नज़रों में पत्तों की तरह, हवा के तिनकों की तरह हल्के होते हैं, फिर अल्लाह उनको उछालता है। इस वक्त मुसलमान उछाले जा रहे हैं, क्यों? वजन ही नहीं है, बेवजन है। आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि दुश्मन एक दूसरे को दावत देंगे, इस तरह जैसे तुम में से कोई खाने का दस्तरखान लगा के दावत देता है कि आओ तुम भी खाओ तुम भी खाओ, इस तरह नॉन मुस्लिम कौमें दावत देंगी कि आओ इन मुसलमानों को मिलके हम ख़त्म करते हैं। सहाबे कराम ने कहा अल्लाह के नबी, क्या उस वक़्त मुसलमान थोड़े होंगे? फ़ौरन ख्याल यही आया ना, थोड़े होंगे इसीलिए ये जुरत होगी। तो आपने फरमाया थोड़े नहीं होंगे, बहुत होंगे, लेकिन उनके अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी। और वो बीमारी क्या है? वहन की बीमारी। कहा अल्लाह के नबी, वमल वहन, वहन क्या? फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी मुसलमानों में और मौत से कराहत करने लगेंगे। हालांकि मुसलमान इससे दो अपोजिट चीज़ों में होता है, मुसलमान मौत से प्यार करता है, खुदकुशी नहीं करता, सुसाइड नहीं करता, लेकिन मौत से प्यार करता है। क्यों? उसकी दो ख्वाहिशें होती हैं, एक जन्नत और एक अल्लाह के चेहरे का दीदार, और ये दो चीज़ें मौत के बगैर नहीं मिलती। और दुनिया तो उसके लिए कैद खाना है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन। अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद में कोई कैदी कितना खुश होगा? कोई रहना चाहता है कैद में? कौन सा दिन होगा इस कैद से आज़ाद होंगे? इस तरह ईमान वाला जिस्म की कैद से आज़ाद होके आसमानों पे अपनी जन्नतों में जाना चाहता है। और इसके बरक्स काफिर के लिए दुनिया बाग है, रौज़तुल लिल काफिर, उसके लिए ये बाग है, ये खेल है, उसके लिए फन है। क्यों? आगे जो मसले हैं वो बड़े ख़राब हैं। एक शख्स थे हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी, बहुत बड़े आलिम गुजरे, इमाम थे अपने वक्त के। उनके पास आया, कहने लगा तुम्हारे नबी की बात सच नहीं है। कहा भाई क्या बात सच नहीं है? कहा वो कहते हैं कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, बागात हैं, वट सो एवर, तो हकीकत में तो ऐसा नहीं दिखता। यानी दुनिया में मोमिन जो हैं उनको लग रहा है कि बड़ी सख्तियाँ आएंगी और काफिर जो है वो बड़ी ऐश और मस्ती में होंगे। इस तरह से उसने पेश किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे नबी की बात झूठ नहीं हो सकती। क्यों भाई, कैसे नहीं हो सकती? कहने लगे कि आज काफिर को जो दुनिया में मौज मस्ती मिली हुई है ना, आखिरत के अजाब जब वो देखेगा ना, जो उसका वहां जाके हाल और हशर होगा, तो वहां जाके उसको लगेगा कि ये दुनिया मेरी बाग की तरह थी। और मोमिनों के लिए अल्लाह ने जो वहां तैयार किया हुआ है ना, उसको पाके जब दुनिया की जिंदगी देखेंगे तो उनको लगेगा मैं कैद की जिंदगी गुजार के आए। ऐसे लोग अल्लाह के नबी के इशारों पे चलते थे, लोग निकल पड़े। रास्ते में असर की नमाज का वक्त आ गया, कुछ ने कहा भी नमाज का वक्त आया, अब नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज वक्त पे है, नमाज हो गई, सलातुल वुस्ता हो गई, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। कुछ ने कहा नहीं भाई, हम तो नहीं पढ़ रहे। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा था तुमने बनू कुरैजा के कबीले में जाके पढ़नी है, हालांकि आपका इशारा क्या था कि फौरन निकल जाओ। अब कुछ ने पढ़ ली, कुछ ने नहीं पढ़ी, चले गए। बाद में जब ये जंग मामला ख़त्म हुआ, अल्लाह के नबी को बताया गया कि अल्लाह के नबी देखें हमने पढ़ ली थी, इन्होंने नहीं पढ़ी, दोनों मामले। आपने किसी को कुछ नहीं कहा, आपने कहा दोनों ने ठीक किया। समझ का फ़र्क है, नीयत ठीक थी, इरादा ठीक था। आज हम दूसरों को कुफर के फतवे दे के, निफाक के पत्ते दे के, हम ज़रा दीन पे आते हैं, हम कहते हैं बाकी हमारे अलावा सारी जहन्नमी है। नहीं, एक ने एक रंग में सोचा, नमाज को देखा कि नमाज फर्ज है, दूसरे ने अल्लाह के नबी के कॉल को देखा। ये बुखारी का क्या पढ़ा करें, यानी यकीन करें, अपने मुताले में ये वाक़यात रखें, आपका ईमान गर्म हो जाएगा, आपका खून गर्म होगा कि कैसे लोगों से हमारा ताल्लुक है, हम किन की औलादे हैं। आज हम इतने ठंडे हो गए, हम सुन हो के बैठे हुए, बल्कि सुन सुन के सुन हो गए, जितना सुनते हैं उतने ही सुन हुए मैं, ये सोच के कि बस अब बहुत नेक हो गए, अब सुनना शुरू कर दिए। सुनने से क्या होगा जब तक इसको आगे अमल में नहीं लाएंगे? तो लिहाजा इस मौके पे फिर उन्होंने जब मुहासरा किया, इतना दिल में खौफ पैदा हुआ बनू कुरैज़ा के लोगों के किलों में अपने आप को बंद करके ताले लगा लिए, सरेंडर करना जिसको कहते हैं, हैंड्स अप कर दिए। कहा नहीं, अब आपने कहा भी क्या करना है इनका मामला। सुबहान अल्लाह, यानी क्या कहानी है। साद बिन माज जो साहबी थे ना, उनकी भी एक अजीब ही कहानी है, यानी अल्लाह ने कैसे उनके साथ मामले करवाए कि कुछ लोग होते हैं कि जो ज़ुबान से जो बात निकालते हैं ना, तो आसमान पे अल्लाह ताला उसकी मुवाफ़क़त कर देता है। हज़रत उमर जैसे लोग, सहाबे कराम जैसे लोग, उनके अंदर कोई इखलास होता है, उनके अंदर सच होता है। जिन लोगों ने यहाँ इन मामलों में किया, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने उनकी मदद की, उनके किलों से उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रौबन, ये सारी आयतें बनू कुरैज़ा के बारे में, किलों में बंद हो गए। कहा बताओ तुम क्या चाहते हो भाई, तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए? अल्लाह के नबी ने कहा कि एक पहली शर्त है कि तुम मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारा जान, तुम्हारा माल, सब कुछ तुम्हारा रहेगा। और ये हमें पता है कि तुम्हारे दिल मान चुके हैं कि ये नबी सच्चा है। ये पहली ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए ये है इस्लाम की सच्चाई। इस्लाम लोगों की जगहों पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता, इस्लाम ज़मीन के टुकड़ों पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता, उसको लोगों को कैदी नहीं बनाना। इस्लाम का एक ही हदफ है, क्या? कि कलिमतुल्लाहियल उल्या, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। जहाँ अल्लाह का कलमा बुलंद होता है ना, बाकी सारी चीज़ें पीछे। अब हजरत अली को भेज रहे थे खैबर की तरफ, और आपने कहा कि अली तलवार ना उठाना, पहले लोगों को दावत देना, कलमे की दावत देना, और कहा अगर वो तेरी दावत पे इस्लाम कबूल कर ले तो वापस आ जाना। फिर ना फिक्र करना कि इतनी ज़मीनें मिल जाती, इतना माल मिलता, इनकी ज़मीनें हम लेते। क्यों? कि अगर तेरी वजह से अल्लाह किसी एक बंदे को हिदायत पे ले आए, हक पे ले आए, तो तेरे हक में 100 सुर्ख ऊंटों के मिलने से बेहतर है। इस्लाम तो ये पैगाम देता है। आज ये हमारी हरकतों की वजह से इस्लाम पे टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने इस तरह का कोई जज्बाती फैसला नहीं किया था कि लोगों को ये दावा करना पड़ता। ये हम लोगों की गलत पॉलिसीज़ हैं। हर बंदा उठ के कानून को हाथ में लेके काम करने को तैयार होता है। 13 साल कुफ्फ अयदियकुम, हाथ नहीं उठाना। बड़े बड़े बहादुर मौजूद थे उस मौके पे। अल्लाह के नबी ज़रा मौका दे, मैं अबू जहल को पूछ लूँ। कहा नहीं उमर, बैठे रहो भी नहीं। कुफ्फ अयदियकुम, हाथ बंद रखो, अभी हम थोड़े हैं, अभी इस्लाम इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बगैर तैयारी के काम करोगे गिरोगे नहीं। अच्छा, मदीना में आए, देखा हालात बन गए, कुछ हुए का उज़िना लिल्लज़ीन युक़ातिलून। पहली दफ़ा सूरह हज में वो आयतें आती हैं जो नाज़िल हों के, अच्छा जो अब इजाज़त है, अब इस्टेब्लिश हो गए हो, अब अगर कोई तुम्हें रोकता है तो जाओ रोको। फिर भी तुमने पहल नहीं करनी, हाँ सिर्फ डिफेंड कर लो। डिफेंसिव वॉर की इजाज़त मिली, ऑफेंसिव की नहीं मिली। यानी दिफा कर सकते हो, इकदाम नहीं कर सकते। इस्लाम का तो वो पैगाम था, और यही कानून और डिसिप्लिन था जिसने सहाबा कराम की तरबियत की। और अल्लाह के नबी के साथियों की क्या तरबियत थी, पत्ता नहीं हिलने देते थे आपकी मर्जी के बगैर। क्यों? उनको पता था कि अल्लाह के नबी की ज़रा सी नाफरमानी हमारे लिए कितना बड़ा फितना लाती है। तो बहरहाल इनको ये ऑप्शन दी कि तुम मुसलमान हो जाओ, फारिग है। दूसरी बात नहीं है तो अपने बीवी बच्चों को जाओ अपने हाथ से कत्ल कर दो, और खुद मर्दाना वार मैदान में लड़ो, और या जीतोगे या मर जाओगे। यानी जो ऑप्शन होती है, बाज़ लोग अक्सर खुद ही जंगों में अपने बच्चों बीवियों को मार देते हैं कि ऐसे ही बाद में इनका क्या होगा, मर्द तो जंगों में मारे जाएंगे तो इनको मार दो। और फिर तीसरी सूरत क्या है कि मकरो फरेब की राय अख्तियार करो। और ये बातें कौन इनको कह रहा है? ये तजावीज़ उन्हीं सरदारों की तरफ से आ रही हैं जो कि काब बिन असद था, कि इन तीनों में से काम करो। और तीसरी सूरत यह है कि मुसलमानों से धोखा करो। हफ्ते के दिन ये लोग कुछ काम नहीं करते थे तो इनको कहो कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन धोखा दो और मुसलमानों को मुतमईन होंगे, कुछ नहीं होगा, तो अचानक हमला कर दो मुसलमानों के साथ, फिर उनको मारो। उन्होंने ये तीनों ही बातें नहीं मानी, कहा ये तीनों ही नहीं ठीक। फिर कहा क्या करें तुम्हारा फैसला? कहने लगे हमारा जो फैसला सात बिन मास करेंगे ना, हम उसको मान लेंगे। सात बिन मास से ये बड़ी मोहब्बत करते थे, और इनका आपस में कुछ दौरे जाहिलियत में इल्हाक भी था। कहा जो ये हमारे बारे में कहेंगे ना हम मान लेंगे। कहा अच्छा ठीक है। अल्लाह के नबी ने सात बिन मास को बुलाया, और सात वो कौन थे कि गज़वे खंदक में एक तीर लगा था इनकी ये कलाई पे और खून निकला था, और इनकी इतना खून निकला था कि मौत करीब थी, लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला से एक दुआ की थी कि अल्लाह मुझे मौत ना देना जब तक मैं बनू कुरैज़ा का इंजाम ना देख लूँ। पता चल गया हुआ था कि इन्होंने गदर किया है। कहते थे मैं मरना नहीं चाहता, पहले मैं इनका इंजाम देखूंगा। फौरन इनका खून रुक गया, जख्म मौजूद था, खून रुक गया। अब जब गज़वे बनू कुरैज़ा का मौका, इनको बड़ी उम्मीद थी कि सात बिन मास जो है ये हमारे बारे में बहुत नरम दिल रखते हैं, और जो ये हमारे बारे में करेंगे हम वही करेंगे। 25 दिन का इनका मुहासरा हो चुका था। फिर कहा क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ इनके लिए क्या किया जाए। तो सात बिन मास ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा तो ये मामला है कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और इनकी औरतों और बच्चों को फिर आज़ाद कर दिया जाए, या बाद में जो भी होगा उन पे हाथ ना उठाए जाए, उनको ग़ुलाम बना लें, इनके माल जो है मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए जाए। अल्लाह के नबी ने इनकी बात सुन के कहा कि सात, तुमने जो फैसला किया है सातवें आसमान पर रब का भी वही फैसला है। इसे बुखारी के लफ्ज़ हैं, यानी तुमने बिल्कुल ठीक बात की। और इसके बाद फिर इनके 600 मर्द जो जंग में जाने के काबिल थे उनको मारा गया, और उन्हीं में हुई बिन अख्तब भी मारा गया जो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बाप था, क्योंकि इसी ने जाके पेशकश की थी ना काब बिन असद को कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। अब वादा तो पूरा करना पड़ा, और उस मौके पे फिर कहते हैं कि ये सारी बात जो हुई थी मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। अब सात बिन माज का ये मामला इनके साथ पूरा हुआ। उसके बाद जब ये मामला ख़त्म हुआ तो अल्लाह के नबी ने देखा कि खून की धारें बह रही हैं, और अंदर जाके देखा तो सात बिन माज का जख्म जारी हो चुका था, और उसके बाद फिर उसी से उनकी मौत आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सात की मौत से अल्लाह का अर्श कांप गया। ऐसे लोग थे, जो कहते थे वैसे हो जाता था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि अगर कब्र किसी को भींचने से रुकती तो वो साध होते, लेकिन कब्र ने सात बिन मास को भी थोड़ा सा भींचा। इतनी नेकियां करके, इतने काम करके भी वो लोग डरते थे, और हम कुछ ना करके भी अपनी जिंदगी में कितने मुतमईन हैं। हम कितने मसरूर हैं। मैं कहती हूँ हमें चैन कहाँ से आता है, हमें नींद कहाँ से आती है, हमें खाने का क्या हक है, हमें दावतें पकाने खिलाने का हक है। हम तो ऐसे खुशियां मना रहे हैं कि जैसे जन्नत के सर्टिफिकेट हमारे हाथों में। सब हो गया, अब जाओ खुशियां मनाओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने ईद के दिन देखा सूखी रोटियां पानी में भिगो के खा रहे थे, और उस वक्त खलीफा थे। कहा हजरत अली आज ईद का दिन है, आप क्या करें अमीरुल मोमिनीन। कहा मेरी ईद ये नहीं, मेरी ईद उस दिन होगी जब मेरा रब कहेगा कि अली जा मैंने तुझे जन्नत में भेज दिया, जब मेरे दाएं हाथ में दामा अमल आएगा, फिर मैं कहूँगा आज मेरी ईद है। हमारी तो हर दिन ईद है, फन पिकनिक ग्लैमर। जितनी दुनिया हमारी बढ़ती है उतनी हमारी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट बढ़ती है। आज हमारा बच्चा बच्चा एंटरटेनमेंट का आती है। आज किसी घर में अगर ऐसी कोई चीज़ ना हो तो कहते हैं हाय ये भी को घर है, इतना जुल्म बच्चों पे, बच्चों के लिए कोई फन ही नहीं। और मस्नूई सहारों के सामने बच्चों को घंटों बिठा दिया कि वो इंसानों से ही दूर हो गए, उनको नेचर से कोई प्यार ही नहीं रहा, उनको बाहर सैर अच्छी नहीं लगी, वो अपनी ही दुनिया में मगन है। इतना उनके कानों में ऐसी आवाज़ें घुस गई कि उनको किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। तो आज आंखें खोलने की ज़रूरत है। ये लोगों के किस्से और वाक़यात हमें अल्लाह क्यों सुना रहा है कि हम अपनी फ़िक्र करें, अपनी ज़िंदगी को देखें, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कहाँ से गुजर रही है। कवाऊ रसकु मरदहुम, हमने तुम्हें उनकी ज़मीनों का वारिस कर दिया। ये कल तक जो इनके किले थे ये सारे मुसलमानों को मिल गए, उनके घर उनके माल उनकी वो ज़मीनें जिस पे तुमने अभी सोचा भी नहीं था, तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं था कि तुम्हें ये मिलेगी। आगे इशारा आ रहा है, खैबर की ज़मीन ऐसी थी, यानी इसके आगे अगर आप उसके हालात सुने तो भी आप हैरान हो जाएंगे कि गज़वे खैबर से मुसलमानों को क्या मिला। सहाबा किराम कहते हैं कि हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता था, यहाँ तक कि खैबर फतह हो गया। इतना माल मुसलमानों को मिला था कि सब आसुदा हाल हो गए। फिर उस मौके पे मुहाजरीन ने कहा अंसार को क्या बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, हम आपके भाई बने, अब हमें ज़रूरत नहीं। हर एक को टुकड़े मिले ज़मीन के, हर एक को अल्लाह ताला ने मामलात कैसे कहे, हर घर में चूल्हा जला, लेकिन एक शख्स ऐसा था कि जिसके एक से ज़्यादा घर थे और उसके घर में चूल्हे नहीं जले, और वो था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। उसकी बीवियों के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के नबी कल तक तो बात और थी, हमें भी पता है आपके पास नहीं है, लेकिन अब तो आ गया है, सबके घरों में चूल्हे जल रहे हैं, हमारी कब सुनी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने एक मुतालबा शुरू कर दिया, क्या कि अब थोड़ा सा तो हमारी भी ज़िंदगी में सूदगी आए ना, ज़रा थोड़ी ऐश हम भी कर लें, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हम भी कर लें। तो उस पर अगली आयतें नाजिल हुई, अलग टॉपिक है इसलिए इंशाल्लाह हम उसको दोबारा शुरू करेंगे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।